नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय पहलवानों ने एशियाई बीच गेम्स की बीच रेसलिंग में 4 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप तथा यूनिवर्सल कप में आज 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। और मुरली श्री शंकर ने सिम्बाइन क्लासिक एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की लंबी कूद का खिताब अपने नाम किया। भारतीय पहलवानों ने एशियन बीच गेम्स में आज बीच रेसलिंग में 4 पदक जीते। इन पदकों की बदौलत भारत ने 3 स्वर्ण सहित 6 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया।
भारतीय पहलवानों ने चीन के सानिया में एशियन बीच गेम्स के आखिरी दिन बीच रेसलिंग में 4 पदक जीतकर भारतीय अभियान को शानदार समापन किया। प्रिया मलिक ने 70 किलोग्राम से अधिक और पुष्पा यादव ने 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप की पूर्व मेडलिस्ट प्रिया मलिक ने मंगोलिया की जोग्रिट को हराया, जबकि पुष्पा यादव ने फाइनल में चीन की मौजूदा एशियन फ्री स्टाइल चैंपियन जी मोंगू को हराया। दोनों पहलवान पूरी प्रतियोगिता में अपराजय रही। सिद्धार्थ ने 70 किलोग्राम वर्ग में रजत और जसप्रीत कौर ने 70 किलोग्राम वर्ग का रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने कबड्डी के महिला वर्ग में स्वर्ण और पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता था। भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 6 पदक अपने नाम करते हुए प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
तो आज का दिन प्रिया मलिक के नाम रहा संजीव, और प्रिया मलिक उभरती हुई खिलाड़ी हैं रेसलिंग में, और देखा जाए तो भारतीय अगर कुश्ती के खिलाड़ी और पहलवान जब उतरते हैं तो क्या है वो कोर्ट बीच का हो या फिर हार्ड टफ हो, मेडल लेकर ही लौटते हैं। तो क्या आज करिश्मा किया इस खिलाड़ी ने शानदार स्वर्ण पदक के साथ?
बिल्कुल सही कहा आपने, ये कुछ नया लग सकता है कि ये बीच गेम्स क्या है, बट इंटरनेशनल इवेंट तो है, दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी वहां हिस्सा ले रहे हैं। और इन गेम्स में भी ऐसा नहीं है कि आप वहां गए पार्टिसिपेट करके चले आए, वहां भी भारत ने जहां जहां भारत के खिलाड़ी उतरे उन्होंने अपना दबदबा कायम किया।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जहां जहां भारत के खिलाड़ी उतरते हैं, और भारत ने इससे पहले 2 पदक कबड्डी में भी जीते थे, तो भारत के जो परंपरागत खेल है उसको किस तरह से मॉडर्न टफ में भी भारत मेडल्स में बदल रहा है, एक अच्छे संकेत भारत के लिए नजर आते हुए। भारतीय खिलाड़ी ने समोआ के आपिया में राष्ट्रीय युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप तथा यूनिवर्सल कप में आज 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। एक रिपोर्ट।
भारतीय भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप तथा यूनिवर्सल कप में अपना शानदार प्रदर्शन तीसरे दिन भी दोहराते हुए भारत के खाते में कई पदक जोड़े, जिसमें सबसे खास बेलाना हरिका का स्वर्ण पदक रहा। बेलाना ने 69 किलोग्राम वर्ग में कुल 197 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं करंगी तरंगिनी ने 179 किलोग्राम और भूमिका मोहिते ने 195 किलोग्राम वजन उठाकर 63 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीते। सीनियर वर्ग के यूनिवर्सल कप में अभिषेक निपाने ने कुल 324 किलोग्राम भार उठाकर 88 किलोग्राम वर्ग का रजत पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो कल भी 4 पदक थे और आज वापस 4 पदक हैं, तो भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी जितना भार उठा रहे हैं मैदान पे उससे अधिक पदक उठाते हुए नजर आ रहे हैं संजीव।
बिल्कुल, 4 गोल्ड मेडल के साथ शुरुआत की थी भारत ने। दूसरे दिन हालांकि गोल्ड नहीं जीत सके ज्यादा, बट एक गोल्ड जीते फिर सिल्वर जीता, तो ओवरऑल आप देखें तो ये कॉमनवेल्थ लेवल गेम्स मतलब देशों के बीच है। अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसमें बहुत सारे खेल हटा दिए गए हैं, बहुत प्रचलित जो खेल हैं, लेकिन जो इस साल जो होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें जो कुछ खेल शामिल है उनमें वेटलिफ्टिंग भी है, तो जाहिर सी बात है कि इस खेल का महत्व बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन वेट कैटेगरी में भारतीय वेटलिफ्टर ने हिस्सा लिया वहां पर जो वेट उठाया वो महत्वपूर्ण है। मेडल जीतना तो अपनी जगह है और उन्होंने अच्छा खासा हरेक वर्ग में स्नैच में भी और क्लीन एंड जर्क में भी वेट उठाया। और जाहिर सी बात है कि जूनियर लेवल पे जब इस तरह की प्रतिभाएं सामने आती हैं तो ये लगता है कि सीनियर लेवल पर भी हमारा भविष्य सुरक्षित है।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जूनियर लेवल पे इस तरह के खिलाड़ी आते हैं तो शायद महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं उनसे और उम्मीदें बढ़ती हैं कि आने आने वाले बड़े आयोजनों में, जो कि 2026 में हम है जहां एशिया कप होना है, एशियन गेम्स होने हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो काफी बड़ी प्रतियोगिता इन खिलाड़ियों के लिए सामने है।
बिल्कुल,
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। हैदराबाद अंक तालिका में चौथे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इससे पहले कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के विजय अभियान पर ब्रेक लगाते हुए उन्हें 6 विकेट से हराया।
न्यू चंडीगढ़ में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर उन्हें इस सीजन में पहली बार हार का स्वाद चखाया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने महज 22 गेंद में 62 रन की तूफानी पारी खेली, वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 59 रन का योगदान दिया। राजस्थान की ओर से यश राज पुंजा ने 2 जबकि जोफ्रा आर्चर और नांद्रे वर्गर ने 1-1 विकेट लिया। 223 रन के लक्ष्य को राजस्थान ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी की बदौलत अंतिम ओवर में हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 20 गेंदों में 51 रन जोड़े। वैभव ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 51 रन और अंतिम ओवरों में डोनावन फेरेरा ने 26 गेंदों में 52 रनों की नाबाद पारी खेली। पंजाब किंग्स की ओर से युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
अगर कल के मैच से क्रिकेट की चर्चा को शुरू किया जाए तो किसी भी टीम के लिए मोमेंटम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो किस तरफ जा रहा है। जब वैभव और यशस्वी की जोड़ी मैदान पे उतरती है, जिस तरह कल वापस वही देखने को मिला, वो 40-50 रन जो बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं, इतना बड़ा टारगेट चेस करने में कितनी बड़ी सहायता होती है।
बिल्कुल, अगर देखिए पावर प्ले में जब सारी फील्ड अंदर होती है और ज्यादा शॉट्स खेलने की जरूरत होती है तो वहां पर आप देखिए तो दो बेस्ट बैट्समैन अभी जो कहें ओपनिंग जोड़ी है, और अगर SRH को भी जोड़े तो ये लोग लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने सही कहा, अगर वो शुरुआती 5-6 ओवर में अगर रन रेट 12-13 के हिसाब से रन बने, 80 रन, 90 रन, अब पहले जैसा नहीं रहा कि 8-9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बना लिए, जब भी आप देखें तो ये रुक जाते हैं तो 6 में बात करते हैं और वो जो रन रेट है जो रिक्वायर्ड है वो काफी कम हो जाता है पहले 5-6 ओवर्स में। तो निश्चित तौर पे ऐसी शुरुआत मिल रही है तो पंजाब की टीम उनके होम ग्राउंड पर भी उनको हरा दिया, जो उनका मोमेंटम चल रहा था, लगातार जीत रहे थे, उस पर ब्रेक लगा दिया।
जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा ब्रेक कह सकते हैं कि पंजाब जो लगातार अब तक अपराजित थी इस पूरे टूर्नामेंट में, उसको हराया है इस युवा टीम ने। और राजस्थान के साथ लगातार दिक्कत ये थी कि शुरुआत में तो अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे थे लेकिन निचले क्रम में थोड़ी सी कमियां थी जो दूर होती भी नजर आई। इस बार आज के मैच की अगर बात की जाए, मुंबई के पास इस सीजन में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अब उसको हासिल ही हासिल करना है। और आज का गेम अब तक अच्छी लय में नजर आ रही है टीम।
हाँ बिल्कुल, देखिए मुंबई के बारे में ये पहले से ही मशहूर रहा है कि ये शुरुआत अच्छी इनकी नहीं होती है, बाद के उसमें जो फेज है पहले 7-8-14 गेम का अगर माने शुरुआती फेज है उसमें तो हाफ तक 7-6-7 गेम तक वो बहुत अच्छा नहीं करते हैं। उसके बाद वो एक बार अगर वो जीत की पटरी पर आ जाते हैं तो लगातार फिर जीत हासिल करते हैं। अभी बहुत कुछ गया नहीं है, अगले 7 गेम अगर वो जीत जाते हैं तो कुल अभी जो 4 पॉइंट है उनके पास 7 गेम से, तो फिर 18 पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे वो क्वालिफाई हो जाएंगे एलिमिनेटर और जो नॉकआउट स्टेज में चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना कि अब यहां से एक भी हार का मतलब है कि वो होड़ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस मैच में जैसी शुरुआत मिली है, हालांकि 12 ओवर में 157 रन है 2 विकेट पे, ये जो मुंबई में हाई स्कोरिंग मैचेस हम देखते हैं बड़े स्कोर भी चेज हो जाते हैं, तो यहां पर अब वो सेफ नहीं मान सकते अपने आप को। लेकिन रिकल्टन जैसा खेल रहे, 35 गेंदों पर 84 रन बना चुके हैं, अभी और कुछ अच्छे बैट्समैन आने बाकी हैं, अगर ये 225 के आसपास पहुंचते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, तो ये फिर मैच में रहेंगे। लेकिन SRH से सतर्क रहना पड़ेगा, उनके पास भी अच्छे ओपनर हैं, अच्छे टॉप 3-4 तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, सामने एक ऐसी टीम है जिसके लिए आप कह नहीं सकते कि कितना स्कोर जो है वो इनफ होने जा रहा है या फिर नाम मात्र होने जा रहा है।
बिल्कुल,
और मुंबई की टीम के फैंस को आपने हालांकि एक अच्छी खबर दी कि यहां से वो बेहतर कमबैक करती है, तो पहले भी ऐसा करिश्मा कर चुकी है कई बार लगातार मैच जीत के, सीजन तक जीतना।
पांच बार के चैंपियन है और ऐसे कोई टीम पांच बार चैंपियन नहीं बनती, और उनके बारे में यह मशहूर रहा है कि अक्सर वो शुरुआत अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन बीच में जब एक बार वो मोमेंटम पकड़ते हैं, जब जीत की पटरी पर आते हैं, तो फिर लगातार उनको रोकना आसान नहीं होता किसी भी टीम।
बिल्कुल, एक इस तरह की टीम है जो कमबैक करना जानती है, और फैंस को भी यही उम्मीद होगी कि मुंबई वापस अपने रंग में नजर आए और एक चैंपियन टीम की तरह खेलती हुई दिखे। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम चीन के साथ मुकाबले में 3-2 से हार गई। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी एचएस प्रणय ने जीत दर्ज की, जबकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी तथा हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। इस जीत के साथ चीन ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज हो गया है, जबकि उबर कप की बात की जाए तो भारतीय महिला टीम पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। तो दो बेहद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हैं, टीम गेम होते हैं, और आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि हम ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल के लिए हैं और वहां पे हम पहुंच चुके हैं। चीन एक मजबूत प्रतिद्वंदी होता है हमेशा बैडमिंटन में आपका, लेकिन 3-2 से आज रही तो काफी हद तक टक्कर नजर आई संजीव।
बिल्कुल, आयुष शेट्टी ने जिस तरह से मैच खेला और वो देखने लायक था, मैं वो मैच देख रहा था, और उसके बाद में एचएस प्रणय ने भी अच्छा खेला, और जो हार का अंतर था जैसा लग रहा था कि कहीं 5-0 से ना हार जाए, लेकिन 3-2 किया, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला है। और आगे जब वो क्वार्टर फाइनल में, अब देखना है कि कौन सी टीम सामने होती है वो, लेकिन फिलहाल भारतीय टीम के प्रदर्शन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा कहा जाएगा।
जी बिल्कुल, एक अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं, और आखिरी में काफी हद तक कमबैक भी देखने को मिला। स्पेन में मैड्रिड ओपन टेनिस प्रतियोगिता में अमेरिका के खिलाड़ी हेली बैप्टिस्ट ने विश्व नंबर एक खिलाड़ी आरियना सबालिंका को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बैप्टिस्ट ने 6 मैच पॉइंट बचाकर 2-6, 6-2, 7-6 से कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। इसके साथ ही सबालिंका का टूर पे लगातार 15 मैचों की जीत का सिलसिला टूट गया है। तो इस प्रकार की जो जीतें होती हैं संजीव, जब आप विश्व नंबर एक को हराते हैं, आप एक युवा खिलाड़ी हैं, तो एक जीवन भर की उपलब्धि आपके साथ जुड़ जाती है।
बिल्कुल, और देखिए जो मैड्रिड में बात हो रही है और स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये इस तरह के कोर्ट पर वो माहिर होते खेलने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसका भी फायदा मिलता है। और वर्ल्ड नंबर वन को हराए तो फिर तो वो बहुत बड़ा आपके लिए एक
टूर्नामेंट जीतने जितना।
जी बिल्कुल बिल्कुल, एहसास होता है।
जी बिल्कुल, एक बेहतर एहसास के साथ ये युवा खिलाड़ी आगे बढ़ता हुआ। मुरली श्रीशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में सिम्बाइन क्लासिक 2026 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की लंबी कूद का खिताब जीत लिया है। कल एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता श्रीशंकर ने 8.12 मीटर की छलांग लगाकर प्रतियोगिता जीती। दक्षिण अफ्रीका के दीवान मैनुअल 8.7 मीटर की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि 2016 रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुवो मंजोंगा 7.86 मीटर की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर रहे। तो अब भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भी बड़ी प्रतियोगिताओं में बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, और मुरली जो है वो लगातार कंसिस्टेंटली अगर देखें तो एशियन लेवल पे या विश्व स्तर के इस तरह के खेल इवेंट्स में वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस तरह से वो जंप लगा रहे हैं 8 मीटर से ऊपर, कोई भी जंप को अच्छा मानेंगे, और वो कंसिस्टेंटली ये कर पा रहे हैं, और रिकॉर्ड भी वो बीच बीच में अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, तो ये अच्छा एक संकेत है।
जी बिल्कुल, एक अच्छा संकेत कह सकते हैं। 8.41 मीटर का उन्हीं का अपना रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड ही उन्होंने काबिज कर रखा है। और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल प्रेम की सराहना की है। उन्होंने गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए प्रधानमंत्री की एक तस्वीर साझा की। दक्षिण एशिया में फुटबॉल के विस्तार के लिए जाने जाने वाले फीफा प्रमुख ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और एक शानदार कैप्शन लिखा कि फुटबॉल सचमुच दुनिया को एकजुट करता है। तो ये खेल लगातार एकजुट करने की कोशिश करता हुआ। एक बार स्कोर बोर्ड पर वापस नजर डाल लेते हैं चलते चलते। मुंबई ने 13 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट खोकर 164 रन बना लिए हैं, और रियान लिकल्टन इस समय 37 गेंदों पर 86 रन की एक शानदार पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।